शादी करोगी मुझसे?
ईशान का सवाल सुनकर कशिश ने पहले तो आंखें फाड़ दी और मुंह खोला। हैरान परेशान सी वो उसे देखती रही, फिर अगले ही पल हैरानगी से बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें खुद को समझ आ रहा है? शादी मैं, वो भी तुमसे? अगर मुझे शादी ही करनी होती तो मैं घर से भागती ही क्यों? गनीमत थी कि उन दोनों के अलावा वहां आसपास कोई नहीं था, वरना कशिश की तेज आवाज में कहीं इन बातों के कारण वे दोनों आकर्षण का केंद्र बन गए होते। ईशान को शायद कशिश से इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और शांत स्वर में आगे बोला, कुछ भी सोचने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने सब जानकर भी अगर तुम्हें शादी के लिए कहा तो कुछ तो सोचा ही होगा मैंने। कशिश शांत हुई और भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूरने लगी। ईशान ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए गंभीरता से कहा, तुम शादी नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी के पीछे पड़ी है। और मुझे भी शादी नहीं करनी, पर मेरी दीदी का दबाव है मुझ पर। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो भी शादी नहीं करेंगी। हम दोनों की परेशानी एक सी है, और मेरी समझ में हम दोनों की परेशानी का सबसे अच्छा हल ये है कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, पर सिर्फ छूटी शादी। बाकी सबके लिए हम पति पत्नी होंगे, पर हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। और ये नाटक बस कुछ वक्त के लिए चलेगा। मेरी दीदी की शादी हो जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे। मेरे पास बहाना होगा कि एक बार शादी टूटने के बाद दोबारा शादी नहीं करूंगा। दीदी भी मुझे फोर्स नहीं कर सकेंगी। और शादी के बाद तुम्हारा भी तुम्हारी फैमिली से पीछा छूट जाएगा। मुझसे अलग होने के बाद तुम सुकून से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना। हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम दोनों आज़ाद होंगे। ईशान ने अपनी बात और उसके फैसले के हर पहलू को कशिश को समझाया। उसकी बात ने कशिश को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ पल गहराई से उसकी बातों के बारे में सोचती रही, फिर भौहें चढ़ाते हुए बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मेरी कोई पर्सनल वजह है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम बताओ, इस नाटक में साथ दोगी मेरा? इससे हम दोनों का ही फायदा है, तो अच्छे से सोचकर जवाब देना। इसके बाद कुछ पल उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही। ईशान जवाब के इंतजार में उसे देख रहा था, जबकि कशिश अपनी ही सोच में घूम रही थी। उसने अच्छे से सब बातों के बारे में सोचा, फिर ईशान को देखकर हामी भरते हुए बोली, ठीक है, मैं नाटक करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे एक ठिकाना चाहिए रहने के लिए। कुछ वक्त तुम्हारे घर में रह लूंगी और इस नाटक से शादी नाम की मुसीबत से पीछा भी छूट जाएगा मेरा। पर तुम आगे चलकर अपनी बात से मत मुकरना, और कहीं नाटक को सच समझकर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करने लगना, और ना ही पति जैसे रोक टोक लगाना मुझ पर, वरना मैं तुम्हारी दीदी को सब सच बता दूंगी। कशिश चेतावनी भरी नजरों से उसे घूरने लगी। उसकी धमकी सुनकर ईशान ने गंभीरता से कहा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं अपनी कही बात से मुकरूंगा, ना ही तुम पर कोई रोक टोक और पाबंदियां लगाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारी करीब आने की कोशिश करूंगा। तुम बस इतना याद रखना कि सबकी नज़र में तुम मेरी पत्नी होगी, तो ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे किसी को भी हमारे रिश्ते पर शक हो। मेरे परिवार की इज्जत तुमसे जुड़ेगी, तो तुम्हें मेरे घर की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना होगा। तुम्हें ऐसा कुछ करने की इजाज़त नहीं होगी जिससे हमारे रिश्ते पर सवाल उठे या मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगे। ईशान ने गंभीरता से कशिश को अपनी बात समझाई, और शायद कशिश उसकी बातों की गहराई में छुपे मतलब को समझ भी गई थी। उसने झट से सहमति में सिर हिलाया और सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, ठीक है, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। तुम्हें अभी तक नहीं पता कि आखिर कशिश शर्मा किस खिलाड़ी का नाम है। तुम्हें एहसास ही नहीं कि कितनी टैलेंटेड बंदी से पाला पड़ा है तुम्हारा। मैं बीवी बनने की इतनी बढ़िया एक्टिंग करूंगी कि देखना तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये सब नाटक है या हमारी शादी सच में हुई है। कशिश अपने मुंह अपनी तारीफ करते हुए, खुद पर इतराते हुए, बड़े ही अदा से अपने माथे पर आते बालों को फूंक मारकर पीछे करते हुए मुस्कुरा दी। उसकी ये सदा परेशान भी मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने कशिश के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो डील डन हुई। हम मेरी दीदी की शादी हो जाने तक शादीशुदा होने का नाटक करेंगे, फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद ना हमारा कोई रिश्ता रहेगा और ना ही हम एक दूसरे की जिंदगी में वापस शामिल होने की कोशिश करेंगे। कशिश ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसके आगे बढ़े हाथ को थाम लिया। डन डना डन डन। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी वो खिली हुई मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने परेशान लहजे में कहा, ईशान, अगर मेरे पापा को पता चला कि मैंने भागकर शादी की है तो पहले वो तुम्हें मार देंगे, फिर मेरी जान ले लेंगे। अपने पापा का जिक्र करते हुए कशिश की आंखों में अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। ईशान ने उसके चेहरे के बदलते भाव को नोटिस किया, फिर उसकी हथेली पर अपनी पकड़ कसते हुए गंभीरता से बोला, उनकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मेरी दीदी संभाल लेंगी। वो तुम्हारा या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिलहाल उनसे बड़ी प्रॉब्लम दीदी को हमारे रिश्ते के लिए कन्विंस करना है, और उसके लिए कोई बढ़िया सी कहानी सोचनी पड़ेगी, वरना उनका पुलिस वाला दिमाग एक सेकंड में हमारे झूठ को पकड़ लेगा। रजनी का जिक्र करते हुए ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, और चिंता करना जायज़ ही था। दो तीन दिन पहले तक वो शादी के नाम से भी दूर भागता था, और आज अचानक शादी करके जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। दोनों इसी बारे में सोच रहे थे, इतने में ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। वाराणसी जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो ईशान उठकर खड़ा हो गया। पहले ट्रेन से नीचे उतरो, फिर सोचते हैं कुछ।
कशिश ने झट से सिर हिला दिया और दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन में बैठे बैठे ईशान थक गया था तो अपने हाथ पैर स्ट्रेच करने लगा। वहीं कशिश वहां लगे चेयर पर बैठ गई और बिस्कुट का पैकेट निकालकर बिस्कुट खाते हुए सोचने लगी। कुछ देर बाद ईशान भी उसके बगल में आकर बैठ गया तो कशिश ने तुरंत बिस्कुट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन ईशान ने इनकार में सिर हिला दिया। कशिश ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए मजे से अपने बिस्कुट खाने लगी। कुछ देर उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही। दोनों अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहे। फिर अचानक ही कशिश के दिमाग में कुछ आया और उसने झट से सिर ईशान की तरफ घुमा लिया। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। बोलो, ईशान ने उसकी तरफ सिर घुमाते हुए कहने का इशारा कर दिया। कशिश हौले से मुस्कुराई, फिर गहराई से सोचते हुए बोली, तुम्हारी दीदी पुलिस में है तो उन्हें सच बता देते हैं कि आज हम ट्रेन में पहली बार मिले। मेरे पापा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। स्टेशन पर मुलाकात हुई और तुमने इतनी मदद की मेरी। मुझे तुम पसंद आ गए और तुम्हें भी मैं पसंद आ गई और फिर हमने शादी कर ली। अगर तुम्हारी दीदी शक करें तो कह देना कि उनकी जिद की वजह से तुमने जल्दबाजी में शादी कर ली और मैंने भी तुम्हें फोर्स किया, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर चले जाते और जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा देते। कशिश ने बहुत सोचने समझने के बाद ये तरीका निकाला था और अब अपने इस सुझाव को पूरे विश्वास के साथ ईशान को देने के बाद अपने तेज दिमाग पर इतराने लगी थी। ईशान कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। फिर उसके बाद कशिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कोई ढंग के कपड़े हैं तुम्हारे पास, सूट या साड़ी? नहीं, कशिश ने तुरंत ही इनकार में सिर हिला दिया। ईशान पहले तो उसका जवाब सुनकर चौंक गया, फिर उसके बैग को देखते हुए उसने भौहें चढ़ाई, तो इस बैग में क्या भरकर लाई हो? कशिश ने उसके सवाल पर अपने बैग की चेन खोलकर बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। ईशान ने बैग को देखा तो चौंक गया। पूरे बैग में खाने पीने की चीजें भरी थी, बस पीछे एक जोड़ी कपड़ा दिख रहा था, वो भी जीन्स जैसा कुछ था।
ईशान के हैरानी भरी एक्सप्रेशन देखकर कशिश ने क्यूट सी शक्ल बना ली। ज्यादा सामान लेकर भागती तो भागने में दिक्कत होती, इसलिए एक जोड़ी कपड़े और डॉक्यूमेंट लेकर भागी थी। यहाँ आते हुए ही रास्ते में कुछ खाने पीने की चीजें ले लिया क्योंकि भूखी नहीं रहा जाता मुझसे। कपड़ों में भी जीन्स टॉप है क्योंकि साड़ी नहीं पहनती मैं, और सूट सलवार में दुपट्टा संभालते हुए भाग नहीं सकती। जीन्स कंफर्टेबल रहती है तो वही ले ली। पर तुम मेरे कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कशिश ने मासूमियत बिखेरते हुए सफाई पेश की और अंत में भौंहें चढ़ाकर सवालिया निगाहों से ईशान को देखने लगी। उसकी बात सुनकर ईशान ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो पहले तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े लें जिसे पहनकर तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर जा सको, और झूठी शादी को सच्ची साबित करने का इंतजार भी करना होगा।